हमने कर्म की मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति और कुछ पारिभाषिक शब्द, इनके बारे में जानकारी ली थी। अब हमारा विषय पांच लब्धि संबंधी चल रहा है। पांच लब्धि के तो नाम हमने देखे हैं। मैं पूछूंगी, अभी जो मैं प्रश्न पूछूंगी हाथ ऊपर करना और सामूहिक रूप से उत्तर नहीं चाहिए, व्यक्तिगत उत्तर। प्रश्न तो मैं सबको पूछूंगी, जिसकी इच्छा है हाथ ऊपर करें और एक कोई भी उत्तर दे देंगे। तो पांच लब्धि के हमने नाम देखे थे, तो ये पांच लब्धि के नाम कौन से हैं? बोलो लक्ष्मी बहन। बराबर, बहुत अच्छा। शोभषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये पांच लब्धि है। उसके पश्चात प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होती है। अभी हम बार बार प्रथमोक्षम नहीं भी कहेंगे तो अपना विषय प्रथमोक्षम का चल रहा है, ऐसी बात हम जानेंगे। हमने प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त होने के लिए कौन सा जीव पात्र है उसकी चर्चा की थी, पात्रता की। तो उसमें हमने 9 पॉइंट देखे। तो ये प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त करने वाला जीव कौन कौन हो सकता है उसकी हमने चर्चा की थी। तो उसमें क्या पात्रता होती है, कौन कहना चाहिए यहाँ? किसकी इच्छा है वो हाथ ऊपर करे। हाँ हाँ, बोल मैं। चारों गति वाला, भव्य मिथ्या दृष्टि, तीन बातें हुई। संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त और गर्भज, और तीन बातें हुई। हाँ हाँ, मंद कषाय रूप जो विशुद्धता वाला है, और जागृत और साकार ज्ञानोपयोग वाला जीव आगे क्या करता है वो, ये तो पात्रता हुई। ऐसा जीव पांच लब्धि पूर्वक प्रथमोक्षण सम्यक की प्राप्ति करता है, यानी ये जो 9 के 9 सभी पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, है ना। तो उसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा भी की थी। सभी 9 पॉइंट्स कोई बताना चाहेगा? और प्रथमोक्षण सम्यक प्राप्त किसे होता है? हाँ, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भज, मंद कषाय वाला जागृत एक रह गया था साकार ज्ञान। तीन तीन बातें याद रखना, चारों गति वाला भोवे मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और गर्व, गर्व ये जो कंडीशन है वो मनुष्य और क्रिएटों के लिए, फिर मंद कषाय वाला जागृत और साकार ज्ञान ऐसा जीव ये तो पात्र है, और पांच लब्धि पूर्वक वो प्रथम उपशम सम्यक की प्राप्ति करता है। ये बात हमने देखी थी। हमने क्षोभम क्या होता है उसकी भी चर्चा बहुत विस्तार से की थी, यानी क्षोभम, क्षोभम लब्धि की बात नहीं है, क्षोभम किसे कहते हैं कौन बताना चाहेगा? क्षोभम की परिभाषा अनलिस आप बताना चाहते हैं? हाँ बोलिए। बहुत अच्छा, बराबर, देश का, बहुत अच्छा। और कौन कहेंगे? नलिन भाई बोला। उदय, बहुत अच्छा। यानी एक सूक्ष्म में ये तीन अवस्थाएं बनती है। हमने देखे थे कि प्रकृति में सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति होती है। अब यहाँ घाती प्रकृतियों में जो अनुभाग जो है वो हम चार नाम देकर उसको पहचानते हैं। घाती कर्मों का अनुभाग वो चार नाम को अनुरूप देता हूँ। हाँ, शैल, अभी ऊपर से तीव्रता की ओर बता रहे हैं, शैल, अस्थि, दारू और लता। आपको भी याद हो गया बिना आए यहाँ? चलो अच्छी बात है। ये चार प्रकार के जो स्पर्धक है बराबर, तो ये तो ये स्पर्धकों की बात है। हमने घाती कर्म जो है उसमें सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति देखी। तो सर्वघाती प्रकृति में कौन कौन से स्पर्धक होते हैं? सर्वघाती प्रकृति में एक कोई उत्तर दे। हाँ बोलो जय। हाँ, शैल, अस्थि और दारू बहुभाग। अब जो देशघाती प्रकृति है उसमें कौन कौन से स्पर्धक होते हैं? सामूहिक नहीं, अभी लेडीज का नंबर नहीं, अभी जेंट्स में कोई नहीं। हाँ आप बोलो। देशघाती प्रकृति की बात चल रही, देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कौन कौन से होते हैं? नाम बताना, मिलिंद भाई बोलो नाम, उसके चार नाम चाहिए, सभी बता दो ना। देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कौन कौन से हैं? यहाँ लिखे हैं सभी, शैल, अस्थि, दारू और लता, सभी देशघाती प्रकृति में स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है ना। तो ये हम सूक्ष्म की परिभाषा भी देखी है और ये स्पर्धकों की भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि नए शब्द है और प्रकृति क्या है, स्पर्धक क्या है, जमलिंग होता है ना, इसलिए हमने इसमें विस्तार से चर्चा की। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अभी क्षोभम लब्धि क्या है ये जानना। क्षोभम क्या है हमने जान लिया, क्षोभम तो देशघाती प्रकृतियों में होता, जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं। अभी हमने देखा सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो पूरा घात हो जाता है, परंतु सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होगा, वो भविष्य में पड़े रहेंगे, उनकी उदीर्णा होकर उदय नहीं आएगा। अभी उदीर्णा होकर उदय होना यानी क्या है कि हमने देखा था कि एक आवली काल तक जो उदय में आते हैं निषेक, उनको कहते हैं उदयावली। जितने काल में वो उदय आने योग्य ना, एक आवली काल तक उदय आने योग्य जो निषेक है उसको कहते हैं उदयावली। हमने कल एक बात देखी थी कि अपकर्षण होता है, तो अपकर्षण होता है, उसमें क्या देखा था कि ऊपर के निषेकों का उसमें से कुछ परमाणु उनकी स्थिति घट जाती है और नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। ये तो अपकर्षण की सामान्य परिभाषा हो गई। अब ऐसे जो अपकर्षण किए हुए जो परमाणु है जो उदयावली के निषेकों में आ मिलते हैं, यहां देखेंगे जरा एक, अपकर्षण होकर तो सभी जगह आते हैं नीचे से ऊपर तक। अभी नीचे के चार जो निषेक है उसको हमने उदयावली हम मान लेते हैं, तो अपकर्षण होकर जितने परमाणु उदयावली के निषेकों में आ मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे उदीर्ण। यानी उदीर्ण ये अपकर्षण का ही एक प्रकार है, क्योंकि अपकर्षण हुए परमाणु सर्वत्र डिवाइड होते हैं, सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, परंतु जितने परमाणु उदयावली में आकर मिलेंगे उसको ही एक नाम है कि उदीर्णा। यानी उदीर्णा किसकी होती है? जो कर्म उदय में आए, यानी अभी उदय जिसका चल रहा है उसी की उदीर्णा होगी, क्योंकि उदीर्णा कहते ही उसे है कि जो उदयावली में आ मिलते हैं, है ना। तो जिस कर्म का उदय नहीं होगा यानी विशिष्ट प्रकृति का, तो उसकी उदीर्णा भी नहीं होगी, है ना। तो ये उदीर्णा होती है। आपने ये उदीर्णा कब होती है क्या कभी सुना है? भोजन के समय के पहले हमारी उदीर्णा होती है। किसकी? भोजन की, हाँ, भूख लगती है। यानी कौन से कर्म की उदीर्णा होती है? असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा होती है, ख्याल है ना। ऐसी उदीर्णा कौन से गुणस्थान तक होती है असाता की, पता है किसी को? यहाँ तो बराबर छठे गुणस्थान तक। इसका अर्थ क्या हुआ? सातवें गुणस्थान से असाता वेदनी की उदीर्णा ही नहीं होगी, तो ना क्षुधा लगेगी ना प्यास लगेगी। यानी मुनियों को क्षुधा प्यास लगती है, वो भोजन करते हैं, ये बात यानी सातवें गुणस्थान के बाद की बात है। तो तेरहवें वाले को लगेगी क्या भूख? नहीं लगेगी ना, तो कौलाहल ही नहीं होगा। देखो कर्णनियम में बहुत ऐसे नियम है कि जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आप कहते हैं, हम कहते हैं, आपका सच्चा हमारा सच्चा, ऐसी बात वहाँ है ही नहीं, बिल्कुल वहाँ धर्म का कांटा है। हुकुमजन जी हमेशा बोलते ना दादा, ये धर्म का कांटा है, तो उसमें कहीं कोई चांस ही नहीं है इधर उधर घूमने का। जो सत्य है वो सत्य है। तभी हम जो शोक्षम की परिभाषा हमने देखी है, अब हम शोक्षम लब्धि क्या है इसको देखेंगे। इसकी परिभाषा हमने कल पढ़ी थी, ये छठा जो पाठ है उसमें हमने देखा था शोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। 68 पेज है हिंदी में, 65 है गुजराती में। उसमें परिभाषा दी है, अब हम पढ़ेंगे कि ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां। ज्ञानावरणादि यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतर आदि आदि सब लेना उसमें। कौन कौन सी? अप्रशस्त यानी अघातिया की अप्रशस्त भी इसमें है। ज्ञानावरण से लेकर जो कुछ अप्रशस्त प्रकृतियां है उनकी शक्ति, शक्ति यानी अनुभव। जिस काल में हमने देखा कि हर एक लब्धि का काल एक एक अंतर्मूल है, तो जिस काल में इनकी शक्ति यानी अनुभव प्रति समय यानी हर समय अनंतवा भाग अनंतवा भाग होता जाता है, उसी को कहते हैं अनंत गुणा घटता जाता है। अनंत गुणा घटना का ही अर्थ है कि पहले जितना अनुभव था उसके अनंत वे भाग अगले समय में हो, जितना भी अगले समय में हुआ उसे तीसरे समय में उसका भी अनंतवा भाग होगा। यानी अनंतवा भाग अनंतवा भाग होकर उदय में आता है। यानी जो अप्रशस्त कर्मों का फल मिलना है वो हीन 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 होते चला जाता है। ज्ञानावरण कर्म भी मंद 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 होता है, दर्शनावरण भी मंद होता है, मोहिनी में मिथ्यात्व भी मंदता की ओर चला जाता है, अनंतानुबंधी के कषाय का उदय चल रहा है, चारों कषाय का उदय है वो भी मंद 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 होते जा रहा है। तो जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, यानी जीव को अभी जो फल मिल रहा है, उसका जो निमित्तपना बन रहा है, उसमें पहले तो तीव्र पाप बांधे थे, जब क्षोभक्षम लब्धि शुरू हो जाती है तो उन पापों का जो फल मिलना है वो मंद होकर वो उदय में आएगा और उसका कम मात्रा में उसका फल मिलेगा जीव को। उस काल में क्षोभक्षम लब्धि होती है, ये क्षोभक्षम लब्धि की परिभाषा है। क्षोभक्षम अगर किसे होता है तो क्षोभक्षम सभी जीवों को होता है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी को क्षोभक्षम है। पहले गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक तो क्षोभक्षम ये ज्ञान क्षोभक्षम वीर्य आदि वो तो सब चले रहे ना, ज्ञान दर्शन वीर्य आदि तो क्षोभक्षम रूप से चल ही रहे बारहवें तक। परंतु यहाँ किसकी बात हो रही है, क्षोभक्षम लब्धि की। क्षोभक्षम तो जन्म से लेकर मरण तक चल रहा है, विशिष्ट क्षोभक्षम जो है ज्ञान का उघाड़ है, या अन्य जो क्षोभक्षम वाली हमने अनेक बातें देखी थी, अनेक भाव वो तो चल ही रहे थे, पूरे नींद में भी चलता रहता है, बेहोश में यानी कोमा में गया तो भी क्षोभक्षम तो विशिष्ट क्षोभक्षम है। जो संगी पंचेंद्रिय वो संगी पंचेंद्रिय है, उतना उसका ज्ञान का उघाड़ भी चल रहा है, भले उपयोग रूप ज्ञान की हीनता हो, भले दूसरे के वो ज्ञान में नहीं आवे कि ये जीव का ज्ञान का परिणमन क्या चल रहा है, राग द्वेष का परिणमन क्या चल रहा है, वो दूसरे के ज्ञान में नहीं आवे, परंतु वहां वो चल रहे ना। जैसे कोई पेड़ है तो उसमें ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई जीव ही नहीं है कि जिसका वो कुछ ना कुछ ज्ञान उसका प्रकट ना हो। तो क्या वहां राग द्वेष होते होंगे कि नहीं होंगे, हमें लगता है रे उसको मन नहीं है, और हम इतने सियाने प्राणी समझ सोच कर राग द्वेष करते हैं तो वो पेड़ कैसा राग द्वेष करता है, ऐसे लगता है ना कि एक इंद्रियादी जीव कैसे राग द्वेष करते होंगे। तो उनका चारित्र गुण है ना वहां, तो उसका परिणमन भी चल रहा है। हमें क्या लगता है कि ज्ञान के कारण मन के कारण हम राग द्वेष करते हैं, मन के द्वारा हम अधिक राग द्वेष करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो संगी पंचेंद्रिय है वही मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी और चारित्र मुनि का 40 कोड़ा कोड़ी बंद करता है। एक इंद्रियों को एक सागर से ऊपर बंद नहीं होता, स्थिति जो बनती है वो अधिक नहीं बनती, फिर भी एक इंद्रिय जो जीव है ना, अभी जो हम देखते पेड़ पौधे अग्नि वायु वगैरह, उनमें तो अशुभ लेशा ही पाई जाती है, तो उनके परिणाम कैसे, हमें तो कैसा अच्छा लगता है, अरे कितने अच्छे झाड़ है, कैसा पेड़ है, कैसी हरियाली है, कैसा पानी मंद मंद बह रहा है ना, पवन कैसा अच्छा है, देवलानी में बहुत अच्छा लगता है। परंतु ये जो एक इंद्रिय जीव है वो अपने ही, जिसको कहते हैं कि प्रचुरता है वहां संक्लेश परिणामों की, तीव्र कषाय नहीं संक्लेश परिणाम है, और उसके कारण वे दुखी है। अब ये जो क्षोभक्षम लब्धि में जो बात आ रही है कि जिस काल में ये अप्रशस्त कर्मों का अनुभव घटकर उदय में आता है, तो नेचुरली वहां जीव के परिणाम, क्योंकि वो घटकर उदय में आता है, वो क्या निर्णय करता है कि जीव के परिणामों के अभी वहां मंदता चल रही है। वो घटकर उदय में आए इसलिए जीव के परिणाम मंद हुए, ऐसा नहीं है, वो तो थर्मामीटर है बताने वाला है, जैसे टेम्परेचर जो बताते हैं बैरोमीटर होता है तपोमाप, तो एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है बताता है, तो वो बढ़ता है इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है हमारा, यानी बाहर का टेम्परेचर वो जो वहाँ पारा ऊपर चढ़ता है बैरोमीटर का, तो उसके कारण वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, वो तो केवल बताता है कि कितना टेम्परेचर चल रहा है, बाहर ठंडा हो गया रात को तो वो पारा डाउन हो जाता है, वो तो बताने वाला है। वैसे कर्म का कौन सा उदय चल रहा है वो क्या बताता है कि जीव के कैसे भाव चल रहे, इतना ही बताता है। वो मंद हुआ, देखो हमारा मंद नहीं हुआ नहीं तो हम भी मंद परिणाम करते, ऐसी बात है ही नहीं, पराधीनता की बात नहीं है, जीव के जैसे परिणाम होंगे वैसे कर्म में सहज में ऐसी बातें बनती है, और वो बताते हैं कि जीव में ये बात चल रही है। तो जिस काल में ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त, घाती कर्म तो सभी अप्रशस्त है ही है, अघाती में भी जो अप्रशस्त कर्म है, अभी आयु को यहाँ छोड़ देना, आयु में कुछ उसके कुछ घटना बढ़ना कुछ होता नहीं है, तो जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में शोभशम लब्धि होती है। उसका अर्थ क्या है? अप्रशस्त कर्मों की जो शक्ति है, अनुभाग है, वह हीन होकर उदय में आता है। यहाँ ये तो हमने कल भी बात देखी थी, फिर जरा दोबारा उसको देखते हैं तो हमारा पक्का हो जाएगा। अब हमने देखे थे कि जो चार चार स्थान है, अभी अप्रशस्त कर्म है, घाती भी है अघाती है, तो उनके चार चार स्थान कौन से हो गए? अप्रशस्त कर्मों की बात करें, अप्रशस्त कर्मों में अनुभाग के जो चार चार स्थान हैं वो कौन कौन से हो गए? घाती में शैल, अस्थि, दारु, लता। और अघाती के जो अप्रशस्त कर्म हैं उनमें, हाँ, अभी नीचे से ऊपर जाना है तो नीम, कांजी, बीज, हला, और ऊपर से बताना है तो हलाहल, बीज, कांजीर और नीम, ये अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग अपेक्षा चार चार स्थान। अब इसमें जो स्पर्धक अनंत होते हैं और एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है, तो उनका अनुभाग घटता है, यानी ऊपर के जो तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक है उसमें से जो परमाणु है उनके अनुभाग घटकर वो नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में आ गए, ख्याल है? ये उसका अनुभाग घटता है। स्थिति घटे या अनुभाग घटे, अभी वो जीव का कर्म ही है, वो अकर्म नहीं हुआ है, जीव की सत्ता में ही पड़े पड़े उन कर्मों में इतना अवस्था उनकी इतनी बदल जाती है। 69 पेज पर अंत में, अभी अगले पेज पर उसके अंत में, यानी 66 है गुजराती, इन दोनों में क्या अंतर है उसको हम देखने जा रहे हैं। कल हमने शुरू भी किया था कि क्षोभशम क्या है और क्षोभशम लब्धि क्या है, उसकी परिभाषा हमने देखी। अब दोनों में क्या अंतर है कि संघी पंचेंद्रिय हो गया तो क्षोभशम लब्धि हो गई क्या, जो इसे हम समझते थे पहले, क्योंकि इस पर कभी विचार ही नहीं किया था, तो हम इतना ही समझते थे कि जो जीव संघी पंचेंद्रिय हो गया उसको क्षोभशम लब्धि मिल गई। अभी उसका अंतर देखते हैं। 69 पेज पर नीचे का पैराग्राफ। अब क्षोभशम और क्षोभशम लब्धि, इन दोनों में जो अंतर है वह तुम्हारे ख्याल में आ जाएगा। क्षोभशम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है, हमने कल बहुत चर्चा की क्षोभशम कौन कौन से प्रकृति, उन सब प्रकृतियों पर हमने घटाया था, याद है? क्षोभशम 18 भाव हमने घटित किए देशघाती प्रकृतियों पर, किसे याद है? हाँ बोलिए। देखो भाव, भाव की बात, यानी चार ज्ञान और तीन कूद ज्ञान, यानी चार कूद ज्ञान और तीन कूद ज्ञान, सात हो गए, तीन दर्शन, हाँ 10 हो गए, पांच हो दान लाभ हो वीर्य क्षोभशम, उसके 15 हो गए, हाँ संयम असंयम, सराचारित्र, क्षोभशम सम्यक, क्षोभशम सम्यक, ऐसे ये 18 भाव हमने घटाए थे, उसकी चर्चा भी खूब की थी। तो ये तो क्षोभशम तो केवल देशघाती प्रकृतियों में ही पाया जाता है, और क्षोभशम लब्धि उसमें क्या होता है? अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होना, ये उसकी कंडीशन है। पहले क्षोभशम में तो अनुभाग घटने बढ़ने की कोई बात नहीं है, क्षोभशम जो है अनुभाग बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब कोई जीव है, पहले कुछ नहीं जानता था, अभी शास्त्राभ्यास करने लगा, बहुत कुछ उसका दिमाग तेज हो गया है ना, ऐसे अभी देखते हैं हम बहुत से बातें याद रखने की, क्षोभशम उसका बढ़ गया, यानी उसका अनुभाग घटना या बढ़ना दोनों तरफ से हो सकता है। परंतु क्षोभशम लब्धि में क्या कंडीशन है? वो घटना ही चाहिए, कितना अनंत गुना घटना है, पहले जितना अनुभाग है उसका अनंतवाभाग, उसका अनंतवाभाग, उसका अनंतवाभाग, ऐसे प्रति समय अनंतवाभाग 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 होकर हीन होकर उदय में आने लगे, तब उसको क्षोभशम लब्धि कहते हैं। क्या है? क्षोभशम तो हमेशा बना रहेगा, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, क्षोभशम जो है वेरिएशन हो सकते, उतना भी रह सकता है। क्षोभशम लब्धि में अप्रशस्त कर्मों का अनुभाव प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय में आने लगता है। ये दोनों में अंतर है। और ये जो कार्य है वो सभी घाती कर्मों में होगा। जैसे हमने क्षोभक्षम देखा था तो सम्यक तो पर तो क्षोभक्षम घटाया था, परंतु जो मिथ्या तो सर्वघाती प्रकृति है तो मिथ्या तो में क्षोभक्षम तो नहीं होता, परंतु जब क्षोभक्षम लब्धि होती है तो मिथ्या तो जो सर्वघाती है उसका भी अनुभव प्रति समय मंद मंद होकर उदय में आते हैं। अनंतानुबंधी भी सर्वघाती प्रकृति है परंतु उसका भी अनुभव मंद होकर वो उदय में आने लगे। अब आगे यानी क्षोभक्षम लब्धि में तो सभी जो कर्म है सर्वघाती हो या देशघाती उनका अनुभव घटता चला जाता है, और क्षोभक्षम में देशघाती कर्मों का जितना अनुभव है उतना ही उदय में आता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन होगा तो अगले समय में और कुछ बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उतना भी रह सकता है। और क्षोभक्षम लब्धि में अनुभव प्रति समय अनंतवा भाग होकर उदय में आने लगता है। और क्षोभक्षम तो निरंतर वर्तता है, जन्म से लेकर मरण तक वो क्षोभक्षम चल ही रहा है, नींद में भी है बेहोशी में भी है, यहाँ लिखा ना नींद में भी बेहोशी में भी कायम रहता है, परंतु क्षोभक्षम लब्धि तो अंतर्मुहूर्त मात्र होती है और वो भी जागृत अवस्था में होगी, नींद में नहीं होगी। क्षोभक्षम तो ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के देशघाती प्रकृति में पाया जाता है, परंतु क्षोभक्षम लब्धि में इन प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात्व और चारित्रमोनीय कर्मों का अनुभव भी अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता है। देखो चारित्रमोनीय का भी अनंतवा भाव होकर उदय में आने लगेगा, तो हमने देखा था आठ कर्मों का उदय चलता रहता है, प्रति समय आठों कर्मों का उदय हो रहा है, और बंद प्रति समय सात या आठ कर्मों का होता है, आयु का कभी कभी होता है इसलिए उसको अलग रखें, परंतु बंद होने में निमित्त कौन है? आठों ही कर्मों के उदय से बंद होता है क्या? नहीं, तो कौन से? मोनी के। मोनी के उदय में नया बंद होता है, और मोनी के उदय में निमित्त कुछ जीव के राज देश परिणाम भी है। यानी मोहिनी का उदय मंद होगा तो नया जो कर्म बंधेगा उसमें कुछ तो वेरिएशन होगा कि नहीं होगा? मोहिनी के कारण नया बंद होता था, जितना मोहिनी तीव्र होगा जितना तीव्र होगा उतना जो नया बंद होता है उसमें भी जो बहुत तीव्र होगा तो अशुभ कर्म अधिक बंधेगा, यानी अप्रशस्त प्रकृतियां बंधेगी, उसका अनुभव भी तीव्र बंधेगा, क्योंकि यहाँ उदय भी मंद हो गया है, जीव के प्राग वेश परिणाम भी मंद हुए हैं, और नया बंधने वाला कर्म भी अभी वैसा मंद वाला बंधेगा और शुभ प्रकृतियां बंधने लगी। तो इसको ही हम विशुद्धि के रूप में अभी देखेंगे आगे चलकर। तो क्षोभक्षम लब्धि में मिथ्यात्व और राग आदि भी मंद हो रहे हैं, तभी तो वहां कर्मों का अनुभवहीन होकर उदय में आने लगा है। ऐसा उल्टा लेना, हम पहले कर्मों की तरफ से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाय चांस कर्मों का अनुभव मंद हुआ है और इसलिए जीव के परिणाम मंद पड़े, ऐसा नहीं, क्योंकि जीव को ऐसे कुछ अव्यक्त वहां तत्व रुचि, अभी तो उसने तत्व सुने भी नहीं है, ऐसे जीव ने तो ऐसे कोई वहां रुचि जागृत हुई है, जिज्ञासा अंदर से हो गई है उसको कि उसके ये तो सारे अनुभव मंद होते जा रहे। क्षोभक्षम तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के देशघाती प्रकृति में पाया जाता है, परंतु क्षोभक्षम लब्धि में इन प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात् और चारित्रमोनीय कर्मों का अनुभाग भी अनंत गुणा घटता हुआ यानी अनंतवा भाग होकर उदय में आता है। उनका तीव्र अनुभाव उदय न होकर कौन सा उदय का है? अनुभाव उदय। प्रकृति उदय से, प्रदेश उदय से, स्थिति उदय से जीव को कुछ लेना देना नहीं, उसका निमित्त बना किससे बना है? अनुभाव उदय से। कितने नंबर ऑफ परमाणु फेरे उदय में आए उससे कुछ जीव के भावों में कुछ वेरिएशन पड़ता नहीं, उसमें कुछ निमित्त बना नहीं होता। कैसा अनुभाव का उदय है वो क्या बताता है? जीव के परिणामों को बताता है, इसलिए हम अनुभाव उदय लिखा है। तभी जीव के जो तीव्र अनुभव उदय, कर्मों का तीव्र अनुभव उदय न होकर मंद अनुभव उदय होता है।
अनुभाग का जो उदय चल रहा है वो भी मंद होता है और वह भी प्रति समय मंदतर होता है। पूर्व समय से अनंतवा भाग होता है, फिर और दूसरे समय में और उसका भी अनंतवा भाग होता है, तीसरे समय में उसका भी अनंतवा भाग होता है। जिसे शैल भाग रूप या अस्थि भाग रूप तीव्र अनुभाग वाले मिथ्यात्व का उदय है। देखो ये कंडीशन है कि अति तीव्र मिथ्यात्व का जो परिणाम चल रहा है उसको एक शोषण लब्धि नहीं है अभी। तो जिसको अति तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, कौन से, शैल वाला और अस्थि वाला, और जिसे सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर या तत्सम उत्कृष्ट स्थिति वाला मिथ्यात्व का बंद होता हो, इसका बंद किसे होगा, जिसका मिथ्यात्व तीव्र होगा। अति तीव्र मिथ्यात्व वाले को ही इतना सत्तर कोड़ा कोड़ी का सागर का बंद होगा। तो ऐसा जो अति तीव्र मिथ्यात्व, तो उस जीव को क्षोभम लब्धि नहीं कहेंगे। हम देखते हैं कि बहुत कोई होशियार है, साइंटिस्ट है, बहुत दिमाग तेज है, परंतु यदि उसको ये तत्व की रुचि नहीं है, आत्मा के बारे में उसको बहुत चीड़ आती है सुनकर भी आत्मा की बात, तो उसका तीव्र मिथ्यात्व चल रहा है, या देव पुरुष शास्त्र के बारे में बिल्कुल विपरीत मान्यता चल रही है। ऐसा नहीं कि बहुत क्रोधी है, बहुत हिंसा करने वाला है इसलिए वो तीव्र मिथ्यात्व, ऐसी बात नहीं है। देव के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में जिसकी विपरीत मान्यता चल रही हो वो तो तीव्र मिथ्यात्व है। तो ऐसा जो जीव है तो उसको क्षोभम लब्धि नहीं कहलाती, उसमें विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि की पात्रता भी नहीं है। क्योंकि जिसको ऐसा मंद अनुभव होकर हृदय में आता है उस समय नेचुरली उसके मंद कषाय रूप भाव होते हैं, उसको हम विशुद्धि कहते हैं। शुभ परिणाम होते हैं, मंदिर में जाने का भाव होता है, देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है उसकी, ऐसे जीवों को धर्मानुराग रूप बुद्धि होती है और वो धर्मानुराग रूप बुद्धि होती है तो उसको हम यहाँ विशुद्धि लब्धि कहते हैं। देखो फिर यहाँ भावदीपिका ग्रंथ में पंडित दीपचंद जी काजरीवाल कहते हैं ऊपर के तीव्र अनुभाग वाले, ऊपर यानी ये जो हमने शैल अस्थि, और शैल में भी बहुत अनंत प्रकार है, तो जिसको अति तीव्र ऐसा जो मिथ्यात्व का अनुभव वाले कर्म का उदय चल रहा है, ऐसे जो जीव है उसको कहते हैं ऊपर के तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों का जिन्हें उदय है, ऐसे तीव्र मिथ्यात्वी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना भी योग्य नहीं है। देखो जब जब हम दान करते हैं ना, तो दान में तीन कितनी बातें आती है, खाली देने वाला और लेने वाला है क्या, तो उसमें तो दाता जो देने वाला है और जो जिसको हम देते हैं उसको कहते हैं पात्र, यानी दाता भी कैसा होता है, पात्र भी कैसा योग्य पात्र होना चाहिए, और जो दान देते हैं ये दान का जो द्रव्य है, द्रव्य यानी पैसा नहीं हो, वो भी कैसे वस्तु जो जिसका दान दिया जाता है, इन सभी का विवेक होना चाहिए। तो यहाँ तो ज्ञान दे रहे हो तो कैसे जीवों को उपदेश देना चाहिए। तो ऐसे जो अति तीव्र परिणाम वाले, अति तीव्र मिथ्यात्व वाले जीव है उन्हें क्या कहें, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना भी योग्य नहीं है। उपदेश देते समय भी पात्रता या अपात्रता का विवेक रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो चाहे सामने आए, चलो उसको उपदेश शुरू किया तो ऐसा, क्योंकि सामने वाला जीव कैसा है वो जिज्ञासु है या नहीं, हम तो ऐसा भाव आता है ना कि ये सब समझे, और समझाते समय इसे ख्याल आ गया कि नहीं ये अतिशय देशी है कि जिन मार्ग भी नहीं सुनना चाहता या अपने कल्याण की बात नहीं सुनना चाहता, तो उपदेश नहीं देना अच्छा है। क्योंकि वो उपदेश सुनने लायक ऐसा कोई नहीं कि अमुक एक जाति का जीव है इसलिए उसको जैनियों को ही देना है, अन्य को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ जात पात की कोई बात नहीं, वो जीव ऐसे सहज उसके परिणाम उसको जिज्ञासा होती कि नहीं हम मुझे भी बताओ, आप इतना श्रद्धा करते हमें भी दो बातें, हमारे घर के नौकर भी कभी कभी ऐसे पूछते कि आप इतना पढ़ते हो हमको सुनाओ। अब मैं तो डिस्पेंसरी में बैठे बैठे ग्रंथ पढ़ा करती थी, तो वहाँ तो एक मोहम्मेडन कोई मैकेनिक था वहाँ बैठने वाला, दरवाजे में छोटी उसकी ऐसी पेटी रखी थी, वो आके पूछा था ये कैसे कैसे होता है, आप इतना पढ़ के हमको भी थोड़ा बताओ, इतनी जिज्ञासा उसको अंदर उस जीव को। तो तो ऐसे जीव वो मुसलमान है कि वो कोई हिंदू है कि कोई अन्य मत, उसकी बात कोई नहीं है। ये तो यहाँ तो हम चारों गति वाले जीव कहते हैं। यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि जैनियों की ये होती है कि उसको ये मिल जाए मार, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ, देखिए ये अरविंद भाई यहाँ आए हैं हमारे यहाँ, अरविंद भाई दोषी पंडरपुर के हैं। तो हम 4-5 साल पहले पंडरपुर में गए थे और वहाँ ऐसा ही सिद्धांत प्रवेशी का शिविर इन्होंने लिया था और ये जैन तत्व परिचय वाली पुस्तकें वहाँ सबको प्रेजेंट की थी बेटी। तो एक महीने के बाद वो अपने गांव गए थे, क्योंकि पंडरपुर में हमने वहाँ वितरण किया था पुस्तकों का। और एक महीने के बाद जब वो अपने गांव गए तो कोई एक लड़का आया, यंग, आप जैसे आपसे भी कम होगा उम्र का, तो वहाँ आया और उनके साथ चर्चा करने लगा कि ये कैसे, इसमें से मुझे कुछ तत्व समझाओ, ये ऐसी बातें यहाँ ऐसा लिखा है। तो ये तत्व चर्चा करते हुए तो उन्हें बहुत आनंद हुआ, चलो अच्छा है, इतनी जो कम उम्र के लोग हैं इनकी इतनी रुचि होना बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा तुझे इतनी रुचि है तो मैं तुझे कुछ पुस्तकें वहाँ से आकर बम्बई जाकर भेजता हूँ, तेरा एड्रेस लिखवा दो। तो उसका नाम पूछा तो उसने कुछ मोहम्मदन नाम ऐसा कुछ बता दिया कि अभी मुझे नाम याद नहीं है। तो उनको भी आश्चर्य लगा, रही मुसलमान लड़का और इतने जैन तत्व में इतनी गहरी रुचि उसकी। तो ऐसे कोई जात के ऊपर कुछ अवलंबन नहीं है, कौन से जीव को कहाँ से कैसे क्या उसमें रुचि जागृत हो जाए नहीं कह सकते। अपने यहाँ वो चंद्रकांत भाई चौधरी है ना, तो उनके भी बाजू वाले को एक कोली फैमिली है जो रोज मांसाहार चलता है घर में। तो उस लड़की ने तत्व परिचय पुस्तक पढ़ी और आजन्म उसने मांसाहार का त्याग कर दिया, कि घर के लोग ऐसे चिंता में पड़ गए कि अभी क्या होगा, हम तो रोज मांस खाने वाले जीव और इन्होंने तो अभी इस लड़की ने त्याग कर दिया। ऐसे बहुत होते कि कौन से जीव को कहाँ से कैसे कुछ ऐसा मिल जाता है। ऐसे जो रुचिवान जीव है तो जरूर वो उपदेश के पात्र है, परंतु कोई हमारे घर में या हमारे कोई जैनी भाई ऐसे होते हैं अपने फैमिली में अपने पहचान वाले, तो उनको बहुत चीड़ आती है इन बातों से, तो उनको उपदेश नहीं देना है, उनके सामने मौन रखना अच्छा है, ख्याल है ना। देखो ये आगे लिखा है, जो तीव्र मिथ्यात्वी और तीव्र कषायी जीव है उसे धर्मोपदेश सुनने की बुद्धि नहीं होती। कोई सुनाने लगे तो उसके कषायों की वृद्धि होती है, वह उपदेशदाता का तथा जिनमें सत्य उपदेश है ऐसे सत्शास्त्रों का ही द्वेष करने लगता है, विघ्न भी डालता है, परंतु ऐसे जीवों को देखकर हमें उनका द्वेष करना योग्य नहीं। कोई डूब रहा हो हम उसको बचाना चाहते हैं और वो स्वयं बचना नहीं चाहता है तो वो तो करुणा का पात्र है, द्वेष थोड़े करना है उसे। वो जब सुधरेगा तो इसी मार्ग से, जब आगे चलकर उसकी जब योग्यता होगी तो सुधरेगा, तो यही मार्ग उसको अच्छा लगेगा, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी सम्यक्त्व की काल लब्धि अभी दूर है और होनहार कुछ और ही है ऐसा समझना चाहिए। जिस वक्त उनकी सम्यक्त्व की काल लब्धि आएगी तब इन 5 लब्धि पूर्वक ही उन्हें सम्यक्त्व होगा। स्वामी जी को हम तो बार बार सुने हैं कह रहे ये तो भूलेला भगवान जी, उसने भी वो भगवान को देखे, द्रव्य दृष्टि से देखते थे तो वो तो सब समान है ना, जैसे सिद्ध वैसे निगोद वैसे हम सब, तो कभी उन्होंने पर्याय दृष्टि से देखा नहीं विरोधियों को भी, द्वेष करने वालों को भी। देखो उस समय उनके मिथ्यात्व दशाएं आदि मंद हो गए, कब, जब उन जीवों की सम्यक्त्व प्रकट होने की यानी 5 लब्धि की पात्रता आएगी उस समय उनके भी मिथ्यात्व और कषाय मंद होगी। कभी न कभी उनको भी समय तो होगा कि नहीं होगा, भले अभी विरोध कर रहे हैं परंतु भव्य है और कुछ काल बाद उनका भी समित्व का समय आने वाला है, तो ऐसे तीव्र कषाय रहते हुए उनको समय तो नहीं होने वाला, उनके भी कषाय मंद होगी। हम अपने में ही देखते हैं ना, कोई जो ऐसे है कि पहले बहुत विरोध करते थे बाद में ऐसे पछताए और पछताए तो इस लाइन में आ गए तो कषाय उनके भी मंद हो गए। कितने ही हमें ऐसे मालूम है कि स्वामी जी के पास तो विरोध करने के लिए जो मूल दिगंबर है ना उनको बहुत पहले चीड़ आती थी कि ये अन्य मत से आए हुए कोई है जो स्वामी जी कहलाते हैं और उनके पीछे ये सब लोग पागल है और हम उनको जाके अपना धर्म सिखाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल फाइट करने के मूड में वहां गए और जो सुना तो सुना तो वो समझे कि हम जो समझ रहे थे हमारे ग्रंथों का अर्थ हमें ख्याल में नहीं आ रहा था, वो अब ये इन्होंने हमें बता दिया। कैलाश चंद जी पंडित थे ना अपने बुलंदशहर वाले, उन्होंने बताया था कि मैं चांद सागर महाराज के संग में 3 महीने उनके संग में था और दीक्षा लेने वाला था और वहां पहुंचे सोनगढ़ में चर्चा करने के लिए, और वहां जाने के बाद वो सत्य स्वरूप ख्याल में आए। तभी तो उनसे तो हम सीखे कैलाश चंद जी से। नेमा काका, हाँ वो भी उन्होंने भी बताया कि ये हम मूल दिगंबरी, हमको सिखाने वाले ये कौन आए, तो चलो उनसे चर्चा करें। बाबू भाई मेहता जी, ये बहुत सारे, हम भी मूल दिगंबरी कहाँ अर्थ समझते थे, बस उपवास करो, देव दर्शन करो, अभिषेक देखो, जय भगवान, और बहुत हो गया तो यात्रा करो। तो इससे अन्य कुछ धर्म होता है इस बात का पता ही नहीं था। यानी तत्व ज्ञान भी कुछ स्टडी की चीज है, कुछ साइंटिफिक स्टडी है, ये बात का पता ही नहीं था। और जब सुना तब पता चला कि नहीं, ये तो हम जो मानते आए थे आज तक वो बात कुछ अलग ही थी। तो हमने भी बहुत से मुनि संघ में उनका आना जाना हमारे घर में चलता था, शांति सागर महाराज के संघ में, वहां भी हम यानी बचपन से ये सब मुनि संघों का वगैरह हो उसमें से बोल रहे, ये सत्य बात पता ही नहीं थी ना। अभी बात निकली है, विषयांत हुआ है, तो शांति सागर महाराज का संघ मसवर गांव में, बहुत छोटा गांव है, वहां मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा हुई थी सन 1954 या 53 की बात, 54 की बात। तो वहां आए थे महाराज शांति सागर महाराज, और वहां कोई अन्य मोक्ष नहीं, श्रावक मोक्ष की बात नहीं, अभी हम जो है सीख रहे सिद्धांत, वो अन्य जो श्रावक है वो वहां पहुंच गए और कहने लगे, वो कोई कान्य स्वामी है और वो ये समयसार का ऐसा ऐसा अर्थ बताते, पुण्य को ले गए थे। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं मेरे सामने आप समयसार रखोगे और मैं यदि समयसार पढ़ूंगा तो मैं भी यही बात कहूंगा, और इस बात की गवाही मेरी माँ है जो अभी भी है मुझे, और शांति सागर महाराज के जो जीवन परिचय ग्रंथ है उसमें भी ये बात छपी हुई है, प्रिंट की हुई है। ये तो ऐसी बात है कि ये तो सत्य मार्ग है ना, तो हमें वो अभी पता चला, ये तो है अनादि का चला आ रहा है, हमारे मुनियों ने इसको लिख के रखा है, कुलचंद्राचार्य अमरचंद्राचार्य इतने लोगों ने लिखा है, अभी ये जो करणानुयोग ग्रंथ वो भी लिखे पड़े, परंतु अर्थ किसे पता है। गुरुदेव का तो करणानुयोग का भी गजब का अभ्यास है, पहले उन्होंने धवलापुर प्रवचन भी की थी जब टेप नहीं हुए हमारे कम्युनिस्टिक से, बाद में तो द्रव्याणुयोग के सामने जो जीव होता है उनकी जैसे तैयारी है वैसे वहां उपदेश भी होता है ना। तो द्रव्याणुयोग का तो उन्होंने मर्म बताया जिसके कारण हम अपने आत्मा को जान सके। हम अभी हम दिवाली में मिले थे कभी नहीं, जन्म जयंती पर, तो किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा, आपने गुरुदेव को सुना, हमने बोला हाँ हम तो भाग्यशाली थे कि बहुत बार सुना, तो आपने सचमुच उनको सुना है, हमने बोला हाँ सुना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो द्रव्याणुयोग पर कथन किया और आप उनसे भी सियानी होंगे कि करणानुयोग के बारे में बता रहे हैं। हमने पूछा आपका विश्वास है कि गुरुदेव तो तीर्थंकर होने वाले हैं, हाँ, तो वो खाली द्रव्याणुयोग का उन ध्वनि में उपदेश देंगे कि चारों अनुयोग का उपदेश आने वाला है वहां। ख्याल है कि जीवन का ऐसा होता है कि अरे वो द्रव्याणुयोग तो महान कार्यकारी है ही, हमारे कहाँ उनसे, हम कोई किसी अनुयोग के पक्षपाती है ही नहीं, हम भी द्रव्याणुयोग को सीखे हैं, परंतु द्रव्याणुयोग के साथ करणानुयोग हम पढ़ते हैं तो बहुत बिल्कुल दृढ़ता आती, शरीर भिन्न है मैं भिन्न हूँ ये तो जानते ही थे, अभी एक एक परमाणु की स्थिति बताएंगे तो ख्याल में आता है कि कितने परमाणु आते और चले जाते, तो वो भी यही बताने वाला है। चारों अनुयोगों का तात्पर्य तो विचार का ही है, वो कैसे निकालना ये हमारे हाथ की बात है, तो ये द्रव्याणुयोग के सिद्धांत को ही पुष्ट करने वाला है, यहाँ कोई अन्य बातें नहीं है, किसी भी अनुयोग में विरोध है ही नहीं, चरणानुयोग प्रथमानुयोग द्रव्याणुयोग सभी जो करणानुयोग जो है चारों अनुयोगों के द्वारा, हमें तो वितरकता ही देखनी है। यानी जो जीव अभी विरोध कर रहे हैं उनके मिथ्यात्व और कषाय मंद होगी जब उनकी पात्रता होगी तब, जिनेन्द्र कथित सत्शास्त्रों की महिमा उन्हें भाषित होगी, उपदेश दाता भी मिलेंगे और उपदेश ग्रहण भी होगा, वे आज माने या कुल काल कुछ काल पश्चात माने परंतु सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझे बिना, आत्मा का स्वरूप समझे बिना, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझे बिना उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा और मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण के फेरों में से छुटकारा नहीं होगा। मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति, हमने देखी ना सर्वघाती प्रकृति, उनकी हमने लीज देखी थी, वहां मिथ्यात्व को भी देखा, उसमें शयन अस्थि और दारू भोग तीन प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। सर्वघाती प्रकृति है तो सर्वघाती प्रकृति में ये तीन प्रकार के स्पर्धक होते हैं। सौक्षम लब्धि में उसका अनुभव अनंत गुणा घटता जाता है, फिर भी उसे मिथ्यात्व प्रकृति का सौक्षम नहीं कहते, है ना, उसका भी अनुभव घटेगा परंतु सर्वघाती में उसको हम सौक्षम नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कहते मिथ्यात्व का सौक्षम चल रहा है, क्योंकि सभी स्पर्धक सर्वघाती, कितने भी मंद क्यों न हो, मिथ्यात्व का अनुभव कितना भी मंद क्यों न हो, जब तक वो मिथ्यात्व है वो तो सर्वघात ही करता है। इसलिए शास्त्र अधिकार में कहा है सूक्ष्म में सूक्ष्म मिथ्यात्व भी टालने योग्य, पंडित जी ने कहा है। तो कितना भी वो मंद हो जाए, दारू का वो बहन हमने बहुत देखा उसमें भी मंद नहीं हो जाए, परंतु उसका अनुभव कितना भी मंद हो फिर भी वो है सर्वघाती, सम्यक्त्व का पूर्ण घात ही करेगा। असाता वेदनी आदि अघाती कर्मों की अप्रशस्त कर्मों का प्रकृतियों का अनुभव भी प्रति समय घटता जाता है, जैसे हमने घाती कर्म में देखा वैसे अघाती कर्मों का भी, जो पहले तीव्र पाप बांधा था अब उसका जब उदय आएगा तो अभी मंत्र होकर उदय में आने लगा वो भी। देखो कैसा सहज सुंदर नियम है, किसी जीव ने पूर्व में बहुत पाप किए हो, तीव्र मिथ्यात्व का सेवन करके तीव्र अनुभव वाले कर्मों का बंध किया हो, तो भी जिस समय उसे अपने आत्मा का स्वरूप तथा तत्वज्ञान जानने संबंधी जिज्ञासा और तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, चल है ना, अभी उसको जिज्ञासा उत्पन्न हुई अंदर, तो उसके पूर्वबद्ध कर्मों का अनुभव मंद होने लगता है। ये उसकी तीव्र जिज्ञासा है, उसके फलस्वरूप कर्मों का अनुभव भी मंद, पहले तो परिणाम बिगड़ चुके थे परंतु अभी संभला, तो पहले बांधे हुए कर्मों का अनुभव विहीन होता है। कौन से पाप कर्मों की बात है, जब मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय कर्म मंद होकर उदय में आने लगेगा तो जाहिर है कि जीव के भी मंद दशा रूप परिणाम होंगे, धर्मानुराग रूप परिणाम होंगे। इसी बात को विशुद्धि लब्धि के रूप में बताते हैं, कर्मों का अप्रशस्त कर्मों का अनुभव मंद होने लगता है, मंद होकर उदय में आने लगता है, वो क्या बताता है कि जीव के यहाँ मंद कषाय चल रहे, मंद कषाय को यहाँ विशुद्धि कहे, यहाँ विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में जब विशुद्धि शब्द है तो वो तो शुभकार विशुद्धि को लेना, विशुद्धि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसकी भी चर्चा यथा समय हम करेंगे। तो इसी बात को विशुद्धि लब्धि के रूप में बताते हैं, पुराने कर्मों के अनुभव उदय का मंद होना कारण है, निमित्त है, और मिथ्यात्व रागादिकों का मंद होना यानी शुभ परिणाम होना उसका नैमित्तिक कार्य है। इसलिए सौक्षम लब्धि को कारण जानकर पहले कहा है और विशुद्ध लब्धि को कार्य जानकर पश्चात कहते हैं, वैसे तो ये दोनों एक साथ विद्यमान रहती है ना, हमने क्रम तो लगाया है परंतु है दोनों एक साथ। कषाय मंद होकर उदय में आते हैं तो उसी समय जिनके परिणाम भी मंद नहीं है, फिर भी इसको कारण कहा सौक्षम लब्धि को और विशुद्ध लब्धि को कार्य कहा, परंतु वे दोनों है एक साथ, वैसे तो दोनों एक साथ विद्यमान रहती है, वे एक ही सिक्के के दो पहलुओं के भांति है, उसमें हम कारण कार्य संबंध लगा सकते। अब कारण कार्य ने उसमें वो निमित्त नहीं बना, अब नए परिणाम शुभराग रूप होते हैं उनके निमित्त से, अब शुभ परिणाम हो गए तो पुण्य प्रकृतियां बनेगी, जिसमें बनने की पुण्य प्रकृति घाती में क्या अघाती में अघाती, क्योंकि घाती में कोई पुण्य प्रकृति होती ही नहीं, तो उसके निमित्त से साका वेदनीय शुभ आयु शुभ नाम उच्च गोत्र आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, यानी जिनके परिणाम शुभ होने लगे हैं अभी, प्रति समय अनुभव मंद होता है पाप कर्मों का, और प्रति समय इसके जीव के विशुद्ध यानी शुभ परिणाम है वो प्रति समय बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसका जो अभी बंध हो रहा है नया बंध वो पुण्य प्रकृतियों का होगा। साका वेदनीय शुभ आयु शुभ नाम और शुभ यानी उच्च गोत्र, बाकी घाती कर्म जो बनते हैं वो तो पाप रूप ही है,
फिर भी उसमें भी अनुभाग मंद बनेगा, ख्याल है ना? पहले तीव्र अनुभाग बनता था, अभी उसका अनुभाग भी मंद होगा। देखो ये प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि आठों ही कर्मों का उदय रहने पर भी नया होने वाला जो बंध है वो नया बंध मिथ्यात्व और कषाय के निमित्त से होता है। और हमने तो पहले सुना था, क्या सुना था? कि योग के कारण प्रकृति बंध और प्रवेश बंध होता है और कषाय के कारण स्थिति और अनुभव बनता है। कोई बात नहीं, तो मिथ्यात्व से बंध ही नहीं होता। किसी ने पूछा था ना, हाँ तो ऐसा किसी ने कहा कि मिथ्यात्व बंध में अकिंचित है, तो इसका क्या अर्थ है? देखो बंध के कारण, बंध के हेतु जिसको प्रत्यय कहा है, तो कौन से है? मिथ्यात्व, अव्यक्ति, प्रमाद लेंगे तो प्रमाद करो तो कषाय और योग, ये पांच है। तो कषाय का नंबर चौथा है। तो जब हम कषाय कहते हैं तो पहले चार ही उसमें गर्भित है। ऐसा नहीं है ना कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद से बंध नहीं होता और अकेले कषाय से बंध होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यहाँ कषाय से ही मिथ्यात्व और कषाय दोनों समझना। अभी इसके लिए जो दलील है वो भी मैं बता दू, नहीं समझने में आए तो कोई चिंता नहीं है, फिर भी सुन लो। ऐसा है ना, जो अनंत अनुबंधी कषाय है, यानी यदि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता और केवल अनंतानुबंधी से बंध होता होगा, तो ऐसी एक कंडीशन होती है कि मिथ्या तो पहले संस्थान में आता है जीव। कौन सा? जिसने पहले समय को प्राप्त किया है। जो समृद्धि जीव है उसको अनंत अनुबंधी का उदय तो नहीं रहता है, परंतु ऐसा कोई समय दृष्टि जीव है कि वो अत्यंत विशुद्ध परिणाम के कारण सत्ता में पड़े हुए सभी अनंत अनुबंधी का अन्य जीव रूप परिणाम आता है, उसको प्रत्याख्यान सत्याख्यान और संगलन रूप कर देता है। सत्ता में पड़े हुए पूरे के पूरे, यानी उसकी सत्ता में अनंत अनुबंधी रहता ही नहीं। मिथ्या तो पड़ा रहता है, उदय संगम प्रकृति का चल रहा है, वह अनंत अनुबंधी पूरा ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं अनंत अनुबंधी का संयोजन किया। और इतने परिणाम उनके विशुद्ध है, फिर भी ऐसा जीव बाय चांस मिथ्या तो नहीं आ सकता है। अब मिथ्या तो में तो आया तो उसके सत्ता में अनंत अनुबंधी है ही नहीं, बराबर। संयत्व में जब तक था उसने अनंत अनुबंधी का नाश कर दिया, अभी उसके सत्ता में अनंत अनुबंधी है नहीं। अब ऐसा जीव गिर कर मिथ्यात्व में आ गए, तो मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व का तो उदय होता है, शुरू हो गया, परंतु अनंत अनुबंधी का उदय कहां से होगा? उसकी सत्ता में है ही नहीं अनंत अनुबंधी। परंतु मिथ्यात्व में आने पर नया अनंत अनुबंधी बनता है, उसी समय बंधना चालू हो गया। परंतु हमने देखा था कि बंध होने के बाद एक कुछ काल तक आवारा काल जिसको कहते हैं उस कर्म का उदय नहीं हो सकता, यानी अभी मिथ्यात्व आने पर, मिथ्यात्व में आने पर मिथ्यात्व के कारण मिथ्यात्व को भी बांध रहा है और अनंत अनुबंधी को भी बांध रहा है। यदि कषाय से ही बंध होना माने तो अबंध होना चाहिए, क्योंकि उसको वहां अनंत अनुबंधी है ही नहीं है। परंतु मिथ्यात्व में आने पर वो मिथ्यात्व को भी बांधेगा, नया अनंत अनुबंधी बांधेगा, एक अंतर्भूत के बाद उस नए अनंत अनुबंधी का उदय चालू हो जाएगा। तो उसमें अंतर्भूत तक अकेले मिथ्यात्व से ही मिथ्यात्व भी बनता है और अनंतानुबंधी भी बनता है। अब दूसरी बात, यानी दूसरी दलील, प्रपदोक्षम समित्व से गिर कर कोई दूसरे गुणस्थान में आता है जिसको साकागन गुणस्थान कहते हैं, वो उसको वहां मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, उदय अनंतानुबंधी का होता है। यानी उसे ऐसा जी लिया कि जिसको मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा है, अनंतानुबंधी का बंध, अनंतानुबंधी का उदय है परंतु उसको मिथ्यात्व नहीं है और मिथ्यात्व का बंध भी नहीं है। यदि अनंतानुबंधी से ही बंध मानेंगे तो मिथ्यात्व का भी बंध होना चाहिए, है ना? ये दो ऐसे बिल्कुल जबरदस्त सिद्धांत है, ये रूल आउट करते हैं कि मिथ्यात्व बंध में अकिंचित है। ऐसी जो मान्यता है वो बिल्कुल विपरीत मान्यता है ना। अब ये थोड़ी सूक्ष्मता है, कल्याण योग का अभ्यास है या जिनका गुणस्थान का उनको समझ में आएगा, परंतु इतना तो ख्याल में आएगा, कुछ कुछ ही वो बातें हमने सुनी, नहीं ख्याल में आए तो कोई बात नहीं, मैंने अपने समाधान के लिए बताया। जब हम कहते हैं कषाय के कारण बंध होता है तो उसने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन सबको मिलकर कषाय कहा है, और उनके कारण स्थिति बंध और अनुभव बंध होता है, और योग के कारण प्रवेश बंध और प्रकृति बंध होता है, ख्याल है ना? तो ये जो यहाँ लिखा है, आठों कर्मों का उदय रहने पर भी नया संबंध मिथ्यात्व और कषाय के निमित्त होता है, इसलिए दोनों के नाम लिखे यहाँ, हाँ मिथ्यात्व और कषाय से होता है। अब यहाँ मिथ्यात्व भी मंद हो रहा है और कषाय भी मंद हो रहा है। शुभ परिणामों से अघाती कर्म की प्रशस्त प्रकृति बनती है और अशुभ परिणामों से अघाती कर्म की अप्रशस्त प्रकृति बनती है, यानी अशुभ राग से प्रशस्त प्रकृति बनती है और प्रशस्त राग से प्रशस्त, किसमें यह डिफरेंस है, अघाती में दोनों ही परिणामों से, यानी जिसको हम पुण्य पाप कहते हैं, दोनों ही प्रकार के परिणामों से ज्ञानावरणा की घाती कर्मों का बंदोबस्त होगा, वो तो दोनों से ही होता है, परंतु नया स्थिति बंधन, यानी अभी जो जिसका अनुभाग मंद होता है उनका जो स्थिति बंध होगा और अनुभाग बंधन होगा तो शुभ परिणामों से कम बंधेगा, यानी स्थिति भी कम बंधेगी और अनुभाग भी कम, किसमें अप्रशंसक जाति में, और अशुभ परिणामों से अधिक बंधेगा। इसी बात को विशुद्धि लब्धि द्वारा बताया जाता है, उसकी परिभाषा देखते हैं। अभी उसकी परिभाषा हम देखेंगे, अब दो मिनट में कोई प्रश्न हो तो पूछना इस बार, तो प्रश्न एक हो गए बिना मेरे को कोई प्रश्न है। हाँ इनका प्रश्न इतना है, शव शब्द लब्धि अंतर्मुंद रहती है तो वो चली जाती है फिर आती है, हाँ ऐसा ही होता है। देखो जब तक की शक्ति क्या है, अभी तो हम एक एक को बता रहे हैं, अब चारों ही लगती एक साथ होती है, यानी जिन जीव ने देखना और जिन्हें देखना इन्हें तत्व विचार करता है, जब तक वो तत्व विचार करने लग जाएगा तो चारों ही लगती उसके एक साथ होती है। उस समय उसके अनुभव भी मंद हो रहा है, यानी शोषण लगती है, उसके परिणाम भी मंद है, वो उसकी विशुद्धि भी बढ़ रही है, देखना लगती है तत्व का विचार वो भी चल रहा है, और प्राय की लगती है कर्म विषय से जो कुछ बातें बनती है और जिसकी विशुद्धि बढ़ती है वो सारी बातें एक साथ होती है। तो अभी तो हमारे एक परिणाम शुद्ध चल रहे, बाद में हम अन्य कार्यों में लग जाते हैं तो हमारे परिणाम बंद हो जाते हैं, तब उसको ये लब्धि नहीं देती। जब फिर कुछ एकांत समय में हमारे वक्त कर भी हम बैठ जाते हैं और फिर वो तत्वों के बारे में सोचने लगते हैं, तभी कभी चारों लब्धि एक साथ उपलब्ध होती है। हाँ ऐसा ठीक है, ये अंतर्मुख है। अभी हो सकता है कि जो अनाधिकारी है जिसने कभी सर्वे नहीं सुने तो पहले शोषण लब्धि कहेंगे, विशुद्धि लगती रहेगी, कितने जो होते हैं विशुद्धि लगती है, मतलब परिणाम है दूसरों को बड़ा करो अपना बड़ा करो किसी से झगड़ा मत करो, मैं शांति से जीवन जीता, तो हमको आपको साधन ही नहीं आना और अन्य को कुछ नहीं करना, हम बने आप साधन नहीं आते हैं आपको पता नहीं आपको कितना भी उनको नहीं चाहिए, हम इतना ही बने हम संतुष्ट है, तो मनुष्य जीवन को इसी में वो उसकी बहुत हमने कुछ पाया और आपसे भी हम बने गए समाज में, यानी तत्व की बात कुछ पता नहीं, हम अपनी पूर्व पर लेने की कैसे मतलब मंदिर में जाना ऐसा ना छात्र सुनने की बात नहीं है, छात्र पर मंदिर जरूर करते थे छात्र की आरती नहीं उठाते छात्र से, परंतु ये अन्य बातें उन्होंने क्या लिखा है छात्र इसका पता नहीं था, तो इसे ही वो जीवन बिताते हैं तो उसमें तो लगती उनको और आगे वो बनेंगे। किसी भी एक योग में देखो जैसे श्रेणी में किसी योग में होता है, अब ये कौन सा योग है और हम सोच समझ के किसी योग में नहीं सकते, वो तो फिर होता है, तो ये तो योग कुछ होता है केवल ज्ञान करना उसकी बात, यानी ऐसे बैठना होगा योग ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ चारों लब्धि आने के बाद सकती, अभी अभव्य जीवन को भी आने के बाद नहीं, तो जब जब ये तत्व विचार में जुड़ेगा तब तक वो चारों लोग सकते। अब विशेष बात करेंगे बात।